कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यानी CPRI शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला पिछले 54 वर्षों से देश में आलू की फसल के विकास के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। संस्थान ने अब तक आलू की 35 नई किस्में जारी की हैं और प्रजनन, बीज उत्पादन, सभी जलवायु क्षेत्रों के लिए कृषि तकनीक, तकनीकी प्रशिक्षण, किसान गोष्ठियां, प्रदर्शनियां व आकाशवाणी पर पाठशालाएं जैसे अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा है। संस्थान ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति व पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसी कारण भारतवर्ष में आलू का उत्पादन लगभग 14 से 15 गुना बढ़ा है। इस रेडियो पाठशाला में किसान भाई बहनों को आलू उत्पादन, विपणन व भंडारण संबंधी पहलुओं पर संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिकों के द्वारा विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
देखो जी, आज पाठशाला शुरू हो गई है और डॉक्टर सरजीत सिंह जी हमारे बीच में आए हुए हैं, तो आलू की इस पाठशाला में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और एक बात, वैज्ञानिकों से मेरी बात होती रहती है कई बार ना जी, पाठशाला के बाहर भी आते हैं वैज्ञानिक, तो उनसे बातचीत में करता रहता हूँ, तो वैज्ञानिक इस बात पे जोर देते हैं आजकल कि किसानों को जो अपना बीज जो है ना अपने आप तैयार करना चाहिए। पर एक बात मैं सोचता हूँ, जब बीज इधर उधर से मिल जाता है, CPRI से मिल जाता है, बाकी जो जगह है वहां से मिल जाता है, तो फिर अपना बीज तैयार करने की क्या जरूरत है?
संत कोराम जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब किसानों को बीज इधर उधर से मिल जाता है तो किसानों को अपना बीज पैदा करने की क्या जरूरत है। लेकिन इसके 3 मुख्य कारण है कि किसानों को अपना बीज क्यों पैदा करना चाहिए। उसमें से पहला कारण तो है कि किसानों को अच्छे किस्म का बीज नहीं मिल पाता है। दूसरा यह है कि अच्छा किस्म का बीज मिलने में मुश्किलें होती हैं। और तीसरा जो है वो बीज काफी महंगा होता है। जैसे आपने कहा कि CPRI से बीज मिल सकता है, तो CPRI का बीज बहुत महंगा होता है, तो इसलिए किसानों को उसको अफोर्ड करना, जिसको कहते हैं ना कि वो
खरीदना जो है महंगा पड़ता है,
महंगा पड़ता है।
अच्छा, मैं किताब में पढ़ रहा था ना जी, आपकी CPRI की किताबें हैं, उसमें पढ़ रहा था 2500 मीटर से ऊपर का जो क्षेत्र है वहां पर बीज उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। 2500 मीटर मतलब 7000 फुट के आसपास का जो इलाका है, इसे ऊपर का जो इलाका है उसमें करना चाहिए, तो इसमें कोई खास विशेषताएं हैं इस इलाके में?
हाँ संकुराम जी, इसमें खास विशेषताएं हैं, वो इसलिए क्योंकि उत्तम किस्म का जो बीज है वो ऐसी जगह पर पैदा करने चाहिए जहाँ पर साधारण खुरंड, भूरा गलन, जड़ी गंथी, सूत्रकर्मी से खेत जो है वो प्रभावित ना हो, एक तो ये है। अच्छा, और दूसरे जो है जो महू कीड़ा जो होता है जो वायरस जैसी बीमारियों को फैलाता है, वो भी ठंडी जगह में या 7000 फुट की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत कम फसल के दौरान में पनप पाता है।
अच्छा, यानी कि ये जो बीमारियां हैं या फिर बीज में वहां पे होती नहीं है,
बहुत कम होती हैं।
अच्छा, बहुत कम।
हाँ
ठीक है जी। तो अब बीज अगर तैयार करना हो अपना, तो देखो पहाड़ी इलाका है हमारा, पहाड़ी इलाके के किसान जो है बीज तैयार करने के लिए महारत है उनको, है बीज तैयार करना हो तो कौन सी विधि उनको अपनानी चाहिए?
बीज तैयार करने के लिए जिसको कहते हैं कि खेत बीज विधि, यह है सीड प्लॉट टेक्निक के द्वारा जो है बीज तैयार करना चाहिए।
अच्छा, तो क्या करना चाहिए विधि में?
इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहले तो खेत का जो है वो चयन करना पड़ता है कि खेत ऐसे होने चाहिए जहाँ पर पिछले साल आलू की फसल ना ली गई हो, और वो ऐसे हो जहाँ पर है कि मिट्टी भी ठीक ठाक हो, एकदम से उसमें पत्थर ज्यादा ना हो, और उसके अलावा है कि जब खेत की जुताई से लेकर और खेत के खुदाई और भंडारण तक उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको यह है कि सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, जैसे है अच्छी किस्म का बीज होना चाहिए, बीमारियों की रोकथाम, कीड़ों की रोकथाम, ये सारे जो है इनके लिए सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ता है जिससे कि उत्तम किस्म का बीज पैदा किया जा सके किसान।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मान लो 1 क्विंटल बीज लगाया जी मैंने एक साल में, पहले साल में, तो 2-3 साल में बढ़ के कितना खर्च हो जाएगा?
ऐसा है कि 1 क्विंटल बीज से पहले साल में जब इसको खेत में हम लगाएंगे तो उससे 5 से 6 क्विंटल बीज पैदा हो जाता है, और दूसरे साल में उससे है कि 25 से 30 क्विंटल पैदा हो जाएगा, तीसरे साल में यही बीज अगर जब इसको हम लगाएंगे तो 150 के करीब जो है क्विंटल ये पैदा हो जाएगा, बन जाएगा।
अच्छा, तो जैसे बीज प्लॉट विधि आपने बताई ना बीज उत्पादन तैयार करने की, तो इस विधि से जब हम बीज तैयार करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान हमारे को रखना चाहिए?
इसमें इन खेत बीज विधि से बीज तैयार करने के लिए 4 बातें मुख्य हैं। एक तो यह है कि अच्छी प्रकार से अंकुरित स्वस्थ बीज का आलू का प्रयोग करना चाहिए
जी।
दूसरा है कि साधारण मिट्टी में 20 क्विंटल प्रति बीघा सड़ी गली गोबर की खाद डालनी चाहिए, और तीसरी है बुआई के समय 32 किलो प्रति बीघा कैन, 52 किलो प्रति बीघा सिंगल सुपर फास्फेट, और 13.2 किलो जो प्रति बीघा म्यूरेट ऑफ पोटाश संतुलित फर्टिलाइजर के रूप में खेत में देना चाहिए।
तो लगभग 13 किलो ही होगी,
13 किलो करीब होगी, और आलू लगाने के तुरंत बाद मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए, तथा खरपतवारों को निकाई गुड़ाई के समय निकाल देना चाहिए, तथा कीड़े व बीमारियों की रोकथाम का भी उचित प्रबंध करना चाहिए।
ऐसे में जैसे विधि बताई ना जी आपने, अब कोई बीमारी वगैरह लग जाए या कुछ हो जाए, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो फसल को फिर बचाने के लिए फिर क्या करना
पड़ेगा? पहाड़ी इलाकों में रस चूसक कीड़े जैसे जैसे या एफिड, जिसको हम माहू भी कहते हैं, वो कीड़े जो हैं काफी मतलब है कि
नुकसान करते हैं,
जो खासतौर से बीमारी फैलाते हैं या रस चूसते हैं, जिससे कि फसल की पैदावार में कम होती है। तो इसके बचाव करने के लिए सबसे पहले है रोगर जो है वो 100 सीसी या मेटासिस्टोक 120 सीसी प्रति बीघा के हिसाब से 10 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि कीड़े खेत के अंदर या जो सीड की फसल है उसमें पनप नहीं पाएंगे। दूसरा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पिछहत्ता झुलसा रोग, जो एक मुख्य बीमारी है, और उसके अलावा कुछ ऐसे पत्ते पर धब्बे पैदा करने वाली बीमारियां भी हैं, इनकी रोकथाम भी करना जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि पत्तियां जब सड़ जाती हैं तो जो जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो नहीं हो पाती है, उससे पैदावार में कमी होती है। तो इन बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए 10 दिन के अंतराल पर डाइथायरम 45 का छिड़काव करते रहना चाहिए, और इसमें 100 लीटर पानी में 200 ग्राम प्रति बीघा की दर से जेडोमिल का छिड़काव उस समय करें जब बीमारी बहुत अधिक उग्रता के साथ में खेत में आई हुई हो।
अच्छा, बहुत हो जाए बीमारी?
हाँ, बहुत ज्यादा, तब उसमें है रेडोमिल का प्रयोग करना चाहिए
जी।
तीसरा है कि पत्ती काटने वाले जो कीड़े होते हैं, जैसे छज्जू कीड़ा जो कि किसान भाई देखते हैं उनमें है कि धब्बेदार कीड़े जैसे होते हैं, स्पॉट होते हैं उनके शरीर के ऊपर, तो ऐसे कीड़ों से उस कीड़ों की रोकथाम के लिए घुलनशील क्लोरोपाइरोफास 20% 200 मिलीलीटर प्रति बीघा के हिसाब से घुलनशील कार्बोलिल या दूसरा घुलनशील कार्बोलिल 7 जिसको 7 भी कहते हैं, 50% उसकी जो क्षमता होती है उसका 120 मिलीलीटर 80 से 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें, और कंदवर्तना काटने वाली सुंडी जिसको कटवर्म कहते हैं, उसकी रोकथाम के लिए जो छज्जू कीड़े वाली दवाई ऊपर बताई गई है जैसे क्लोरोपाइरोफास 20, तो उसकी 20 मिलीलीटर प्रति बीघा के हिसाब से, उसका प्रति बीघा के हिसाब से छिड़काव करने से इस कीड़े की रोकथाम की जा सकती है।
अच्छा, जैसे बोलते हैं डॉक्टर साहब भी, जैसे कई बीमार हो गया, कोई पौधा बीमार हो गया, तो बढ़िया तो तरीका ये है बीज वाली फसल में या दूसरी फसल में कि उसको जो है बीमारी फैलने से पहले ही उखाड़ के फेंक दो, या कोई और जो बेकार के पौधे लग जाते हैं उनको भी उखाड़ के फेंक दो। एक तो बीमारी नहीं फैलेगी, खाद नहीं पानी नहीं हमारी जो है वो बर्बाद नहीं होगी, तो ये पर निकालने का है, ये बड़ी समस्या रहती है।
ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो ऐसे पौधे थे जो रोगग्रस्त पौधे होते हैं तो उनको किस समय पर निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो है किस, एक तो है कि क्योंकि रोग का साधन बनते हैं, क्योंकि रोग अपने अंदर लिए रहते हैं, और फिर दूसरे जो स्वस्थ पौधे भी होते हैं उनको भी मतलब है कि रोगग्रस्त करते रहते हैं, तो ऐसे पौधों को, और या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दूसरी किस्म का भी पौधे हो सकते हैं फसल के अंदर, तो ऐसे पौधों को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इन ऐसे पौधों को निकालने के लिए ये पूरी फसल के दौरान में करीब 90 दिन के फसल के दौरान में इनको 3 बार करना पड़ता है। एक तो ऐसा है कि जो 40 से 45 दिन के बीच में पहले जो जिसको हम कहते हैं रोगिंग कहते हैं या निकासी कहते हैं बीमार पौधों की, वो 40 से 45 दिन के बाद में। दूसरी जो होती है एक होती है जो 60 से 65 दिन के बाद में होती है, जब पौधे जो है में फूल आने लगे उस टाइम पर करने पड़ती है। इससे क्या हो फायदा होता है कि अगर दूसरी किस्म के पौधे होते हैं और उनमें दूसरे रंग के फूल आते हैं तो उससे आसानी से निकाला जा सकता। और तीसरा जो है वो करीब 75 से 80 दिन के बाद में करने पड़ती है, जिससे है कि अगर कोई देर से कोई पौधा अगर कोई बीमार दिखाई पड़ रहा है तो उनको निकाला जा सकता।
अच्छा, ये भी बोलते हैं डॉक्टर साहब, साइंटिस्टों ने बताया भी, पाठशाला में भी बताया, और भी मैं प्रदर्शनियों वगैरह में गया भी, आलू की फसल पे डंठल जो है ना वो काट देने, पर कब काटने?
हाँ, आलू के जो डंठल होते हैं, जो बीज की फसल होती है उसके डंठल काटना जरूरी होता है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आलू के पत्ते काटने से, डंठल काटने से यह फायदा है कि जो आलू अगर ज्यादा दिन तक खेत में रखे रहे पत्तों को तो उससे आलू का आकार बढ़ता रहता है, तो पत्ते काटने से आलू का आकार में रुकावट आ जाती है, तो जो हमको बीज के आकार के जो आलू वो ज्यादा मिलते हैं। दूसरा यह है कि पत्ते इसलिए काटने चाहिए कि खुदाई के समय आलू का छिलका कच्चा रह जाता है, इसलिए पत्ते पहले इसलिए काटने पड़ते हैं ताकि छिलका पक जाए और आलू खुदाई में कोई किसी तरह के लह की उसमें नुकसान या ब्रूजिंग, जिसको ब्रूजिंग कहते हैं, छिलका ना उतरे, वो होता है। और तीसरी बात जो ये है वो ये कि जो माहू कीड़ा जिसको बोलते हैं, वो माहू कीड़ा क्या होता है कि देर में उसके, क्योंकि समय होता है कि जुलाई के आखिर में तब वो पनपने लगता है, ज्यादा संख्या में बढ़ने लगता है, तो उस समय अगर हम पत्ते काट दें तो माहू जो है पत्तों के ऊपर बैठ के रस नहीं चूसेगा और जो बाहर से दूसरे वायरस लेके आया है उनको जो है वो उस फसल के अंदर वो उनको प्रभावित नहीं, हाँ प्रभावित नहीं करता।
वाह जी, तो तीन आपने फायदे बताए। एक तो जो बीज का जो आकार है, आलू के जो बीज है उसके आकार बड़ा नहीं होगा क्योंकि बीज आलू थोड़ा छोटा चाहिए होता है। दूसरा बताया छिलका पक जाएगा, और तीसरा आपने बताया कि जो जो बीमारी है माहू जो वायरस की जो बीमारी है फिर वो नहीं फैलेगी। मान लो जी डंठल काट दिए हमने तो उसके कितने दिन के बाद फिर फसल हमारे को खुदाई करनी चाहिए?
आलू की खुदाई जो है पत्ते काटने के 15 से 20 दिन के बाद में शुरू करनी चाहिए, जब है कि खेत में ज्यादा नमी ना हो और खेत में आसानी से कोई भी यंत्र सही रूप से प्रयोग किया जा सके और आलू के साथ में ज्यादा मिट्टी ना लगी रहे, ऐसे समय पर आलू की खुदाई करनी चाहिए। अगर मान लीजिए उस टाइम पर पानी पड़ गया हो बारिश की वजह से या किसी वजह से और नमी ज्यादा हो तो उस समय आलू की खुदाई नहीं करनी चाहिए। खुदाई तभी करनी चाहिए जब खेत में कोई भी किसी तरह की खेती योग्य क्रिया की जा सके।
अच्छा, मतलब यानी कि बहुत ज्यादा अगर नमी हो, कीचड़ हो जाता है कई बार, बहुत तेज बारिश होती है, तो ऐसे में नहीं करना?
ऐसे में बिल्कुल आलू की खुदाई नहीं करनी चाहिए।
अच्छा, नमी कम होनी चाहिए ताकि जो खिलना है जिसे हम खोदेंगे वो आराम से जो है
चल सके और उसमें जो है मिट्टी आलू के साथ में ज्यादा ना लगी रहे।
अच्छा, मान लो जी अब आलू जब हम निकालते हैं ना जी, तो आलू को कुछ दिन तक हवादार कमरे में ढेर बना के रखते हैं, मैंने देखा किसानों को कई करते हैं ऐसे, तो ऐसा पर क्यों करते हैं?
शंकु राम जी, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आलू को जब खेत से खोदते हैं तो कुछ आलू ऐसे होते हैं जो देर से बनते हैं, उनका छिलका अभी कुछ कच्चा होता है। दूसरे हो सकता है कि उस टाइम पर आलू के अंदर मिट्टी में नमी ज्यादा हो, तो इसलिए छिलका पकाने के लिए आलू को ढेर में रखते हैं और वो 15 से 20 दिन तक ढेर में ही रखना पड़ता है, जिससे कि आलू का छिलका पक जाए और मिट्टी जो है सूख जाए।
तो बीज आलू जो है ना जी, अब तैयार हो गया, मान लो जी आ गया कमरे में, आ गया हमारे गोदाम में, आ गया घर में आ गया, तो उस वक्त इसका उपचार भी करना पड़ेगा?
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि जब आलू खेत में से घर में आ गया और हमने उसकी छटाई भी कर ली है तो उसको छटाई करने के बाद में उसको उपचारित करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला काम तो यह है कि उनको अच्छी तरह से ग्रेड करके, छटाई करके उनको 3% बोरिक एसिड के घोल से 30 मिनट तक उपचारित करना चाहिए, जिससे कि जो छिलके के ऊपर अगर कोई किसी तरह की कोई बीमारी का जीवाणु है तो वो इस बोरिक एसिड के उपचार से मर जाएगा।
अच्छा, यानी कि फिर बीज बिल्कुल बढ़िया हो गया?
एकदम बिल्कुल बढ़िया हो।
अच्छा, अब बात ये है कि अब ऐसे तो हुआ नहीं कि बीज आया, उपचार किया और एकदम मंडी में भेज दिया, वो तो रखना पड़ेगा, मंडी में भाव मिलेगा तब जाएगा, तो उसका जो भंडारण हमने अपने घर में करना है वो कैसे करना?
इसके लिए सबसे पहला तो यह है कि जब उपचारित कर लिया, उपचारित करने के बाद उसको छायादार जगह पर सुखाना पड़ता है ताकि उसके ऊपर नमी ना रहे आलू के ऊपर, और जब वो सूख जाए छायादार जगह में तो उसको बोरियों में भर के उसको रखा जाता है, और ये बोरियों में फरवरी के महीने तक रखा जाता है। अगर बेचना हो तो भी वे बोरियों में जा सकता है, और अगर अपने बीज के लिए ही रखना हो तो ये तब भी बीज के लिए फरवरी के महीने तक रखा जाता है, लेकिन फरवरी के महीने के बाद में इसको हमको क्योंकि बीज के लिए इस्तेमाल करना है तो उस समय में इसको हमको या तो है कि लकड़ी के क्रेट होते हैं या प्लास्टिक के क्रेट्स होते हैं, बक्से होते हैं, तो उसमें इसको मतलब रख देना चाहिए, बदल देना चाहिए। अगर बक्से या क्रेट्स ना हो तो इसको फर्श पर फैला के उसको अच्छी तरह से जहां पर है कि कम रोशनी आती हो ऐसी जगह पर फैला कर रखना चाहिए, और उसमें गले सड़े जो आलुओं को निकालते रहना चाहिए।
तो डॉक्टर सरजीत सिंह जी, आज आपने बड़ी सी जानकारी दी कि जो उत्तम बीज हमने जो तैयार करना है अपने आप जी, तो उसको पैदा करने की क्या विधि है, और जब वो पैदा हो गया तो उसके खुदाई से 15-20 दिन पहले डंठल काट देने हैं ताकि वो बीज हमारा बढ़िया तैयार हो जाए, और जब बीज घर में आ गया तो 3% बोरिक एसिड से 30 मिनट तक उसका उपचार करना, और घर में हमने जो है ग्रेडिंग करके बढ़िया रखना है, और जो गले सड़े जो आलू हैं वो हमने जो है फेंक देने हैं ताकि उनसे कहीं सारी फसल जो है हमारी वो खराब ना हो जाए। ये सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
आपको।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यानी CPRI शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला पिछले 54 वर्षों से देश में आलू की फसल के विकास के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। संस्थान ने अब तक आलू की 35 नई किस्में जारी की हैं, और प्रजनन, बीज उत्पादन, सभी जलवायु क्षेत्रों के लिए कृषि तकनीकी प्रशिक्षण, किसान गोष्ठियां, प्रदर्शनियां व आकाशवाणी पर पाठशालाएं जैसे अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा है। संस्थान ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति व पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसी कारण भारतवर्ष में आलू का उत्पादन लगभग 14 से 15 गुना बढ़ा है। इस रेडियो पाठशाला में किसान भाई बहनों को आलू उत्पादन, विपणन व भंडारण संबंधी पहलुओं पर संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिकों के द्वारा विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
वाह जी, डॉक्टर सरजीत सिंह जी, देखो जी हमारी पाठशाला में उपस्थित हैं आज, और बाकी किसान भी आए हुए हैं, बजाखुराम जी भी आए हुए हैं, पर आज इनके ना कुछ दांत में थोड़ी दर्द है, तो सवाल मेरे को ही पूछने पड़े हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ऐसा है भी, उत्तम बीज की जो बात करते हैं ना कि बीज बढ़िया हो तो फिर बीमारियां भी कम लगती हैं, और बोलते हैं कि फसल पैदावार के लिए जो है उत्तम बीज, बढ़िया बीज जिसको हम बोलते हैं, वो अपने यानी कि आप में एक खास बात है। बीज बढ़िया हो, खेत ठीक हो, बरखा ठीक टाइम की हो जाए तो फसल जो है अपने आप बढ़िया हो जाती है। तो डॉक्टर साहब जो उत्तम बीज जिसको हम बढ़िया बीज बोलते हैं वो क्या होता है, और उसके अगर उत्पादन अगर हिमाचल प्रदेश में करना हो तो उसके लिए कैसा मौसम चाहिए, और कहाँ कहाँ ये बीज हो सकता है उत्पादन?
शंकर राम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तम बीज उसे कहते हैं जिसमें किसी अन्य किस्म का मिश्रण न हो और वो बीज रोग रहित हो। दूसरे, उत्तम बीज पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल से जुलाई अगस्त महीने में, महीने की गर्मियों के मौसम में पैदा किया जाता है, और इन दिनों रात दिन का तापमान 12 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है और 10-12 दिन में वर्षा होती रहे तो अच्छी रहती है, और फसल के दौरान माहू कीड़े की संख्या अगर कम हो तो बहुत अच्छा होता है
जी। और हिमाचल में कहाँ, किन ऊंचाइयों में पैदा किया जा सकता है? देखो पहाड़ी इलाका है ये हमारा जी।
हिमाचल में जो जहाँ तक की ऊंचाई की बात आती है वो करीब 7000 फुट की ऊंचाई वाला जो एरिया है या उससे ऊपर का जो क्षेत्र है वो उत्तम बीज पैदा करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और वहाँ की मिट्टी भी रेतली हो या दोमट चिकनी हो तो वो मिट्टी भी बहुत अच्छी रहती है, पथरीली मिट्टी में, क्योंकि ज्यादा पत्थर होने से उसमें जो है पैदावार कम होती है।
अच्छा, जैसे मिट्टी की आपने बात की ना भी, दोमट मिट्टी हो, थोड़ी रेतीली हो, पत्थर नहीं होने चाहिए, ऐसी मिट्टी 7000 फुट के ऊंची जो आप क्षेत्र बताए, तो ये ऊंचाई वाला इलाका ही क्यों अच्छा माना जाता है?
वो इसलिए माना गया है क्योंकि 7000 फुट से ऊंचे वाले क्षेत्र में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो भूमिगत बीमारियां होती हैं, जो भूमि से ही पैदा होती हैं, तो वो बीमारियां ठंडा मौसम होने की वजह से, क्योंकि 7000 का जो फुट का जो एरिया है, ऊंचाई वाला एरिया है, वहाँ पर ठंडा ठीक ठीक ही होता है, कोई ज्यादा गर्मी नहीं होती है, क्योंकि जो बीमारियां होती है जब ज्यादा तापमान होता है तो बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं, तो इसलिए ठंडे मौसम में बीमारियां कम पैदा होती हैं, और उससे जो माहू कीड़ा भी होता है वो माहू कीड़ा भी ज्यादा नहीं पनप पाता, इसलिए 7000 फुट तक का ही क्षेत्रफल इसके लिए उचित माना गया।
अच्छा चलो जी, मान लो जी 7000 फुट के ऊपर वाले इलाके में जो है हमने बीज उत्पादन करना है, पर कौन सी किस्म का करना है?
हिमाचल प्रदेश में वैसे तो मुख्य वैरायटी एक ही है जिसको कुफरी ज्योति कहते हैं
जी।
लेकिन इसके अलावा अन्य दो और किस्में भी हैं, जैसे कुफरी चंद्रमुखी जो कि लाहौल स्पीति क्षेत्र में काफी उगाया जाता है, और दूसरी है एक नई किस्म जो उन्नतशील किस्म अभी निकाली है जिसको है कि कुफरी गिरिराज कहते हैं। ये तीन किस्में जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी पैदावार डिफरेंट क्षेत्रों में दे रही है।
अच्छा, कई किसान ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये आलू तो आलू है, अब बीज के लिए कोई भी आलू इस्तेमाल कर लो, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं?
देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि आलू तो आलू है ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब बीज की बात आती है तो बीज के लिए हर तरह का आलू नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आप कहेंगे कि नहीं जी मैं तो मंडी से भी आलू ले जाके इसको लगा सकता हूँ, तो पैदावार तो वो भी देगा जरूर देगा, उगेगा वो भी देगा, लेकिन उसमें आपको जितनी पैदावार चाहिए वो पैदावार नहीं मिलेगी, जितना आपको है कि उसमें उगना चाहिए उसको उतना उग नहीं पाएगा, और उसमें है कि आपको अगर एक ही किस्म का एक ही तरह का ग्रेडिंग वाला आलू चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में आप कोई भी किसी भी तरह का आलू इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए तो क्या है कि अच्छे किस्म का उन्नत बीज होना चाहिए, वो बीमारी रहित होना चाहिए, उनका आकार एकदम से सही होना चाहिए, तो वही बीज को इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे बीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है एक तो बढ़िया बीज आपके CPRI से मिलता है, ठीक है जी, तो उसके अलावा और कहाँ कहाँ से किसान भाई ले सकते हैं बीज?
देखिए, किसान भाई जो है वो हमेशा CPRI के पास तो नहीं आ सकते हैं,
तो
बीज लेने नहीं आ सकते हैं, और किसान भाइयों को दूर दूर से प्रदेश के दूर दूर से क्षेत्रों से आना पड़ता है, तो मैं तो उनके लिए यही सलाह दूंगा कि वो अपने क्षेत्रीय कृषि केंद्रों से अच्छे उत्तम किस्म का बीज, चाहे वो प्रमाणीकृत बीज हो, चाहे वो आधार बीज एक हो, उसको प्रयोग में लाएं। अगर मान लीजिए ये संस्थाएं उनके आसपास ना हो तब वो किसी भी उन्नतिशील किसान से अच्छी किस्म का बीज ले सकते हैं।
अच्छा, ऐसा है देखो, बढ़िया पैदावार के लिए डॉक्टर साहब भी जो है ना खाद डालनी है, अंग्रेजी खादें हैं ये ठीक होनी चाहिए इनकी मात्रा, तो बीज आलू के लिए कितनी हमारे को खाद और कितनी हमारे को अंग्रेजी खाद डालनी चाहिए?
देखिए शंकु राम जी, है अच्छी पैदावार लेने के लिए जो जिसको कहते हैं ना कि रासायनिक खादें हैं
जी,
इनका डालना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आलू जो है बिना इनके तो पैदा नहीं हो सकेगा। उसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नत्रजन जिसको हम कहते हैं, नाइट्रोजन जिसको कहते हैं, वो जो है 900 9 से 10 किलो नत्रजन, जिसको है कि आप 36 से 40 किलोग्राम कैन से पूरा कर सकते हैं, और इसी तरह से 8 से 9 किलोग्राम जो है वो सुपर फास्फेट, जिसमें है कि सिंगल सुपर फास्फेट की 48 से 54 किलो मात्रा देनी पड़ेगी, और तीसरी जो फर्टिलाइजर है वो फास्फोरस है, उसकी भी 8 से 9 किलोग्राम पोटाश यानी अर्थात 48 से 54 किलोग्राम म्यूरेट पोटाश के रूप में उनको आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि किसान भाई दो तिहाई खाद, इसके इस खाद के मिश्रण को, दो तिहाई मिश्रण को केवल आलू लगाते समय खेत में डालें, और एक तिहाई जो नत्रजन है वो जब वो मिट्टी चढ़ाते हैं उस टाइम में उसका प्रयोग करें।
अच्छा, बिजाई के लिए जैसे आलू के बीज हैं जी, वो किस तरह का होना चाहिए?
देखिए, बिजाई के लिए बीज पहले तो सबसे पहले तो शुद्ध होना चाहिए
जी,
फिर उसमें है अच्छी तरह से अंकुर निकले होने चाहिए, और उसके अलावा है कि उसमें जो उनका साइज है, उसमें जो अंकुर का साइज है वो करीब 1 सेंटीमीटर करीब होना चाहिए, जिसमें जो कंद जिनमें है कि अंकुर न हो या बहुत पतले अंकुर हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो अच्छा बीज देखने में अच्छा लगता है, स्वस्थ लगता है, स्वस्थ अंकुर हो और आकार ठीक हो, ऐसे ऐसे बीज का इस्तेमाल करना।
अच्छा, अब देखिए जो बीज आलू है ना, जिसको कंद बोलते हैं हम, वो कहीं छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो एक ही दूरी पे बोना या अलग अलग दूरी पे बोना?
देखिए कि क्योंकि आलू की फसल लेने के लिए दूरी जो है, पौधों की दूरी और लाइनों की दूरी का उचित होना बहुत जरूरी है, इसलिए छोटे बीज को हम ये कह सकते हैं कि छोटे बीज को थोड़ा कम दूरी पर, यानी 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, और उससे जो बड़ा बीज है उसको 20 सेंटीमीटर पर, और उससे और अधिक बड़ा बीज है तो उसको 25 या 30 सेंटीमीटर पर, और जो सबसे बड़ा अगर बीज है तो आप ज्यादा से ज्यादा 35 सेंटीमीटर पर उसको पौधे से पौधे की दूरी रख के लगा सकते हैं, लेकिन पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर की रखना जरूरी है, जिससे कि पौधे अपनी अच्छी तरह से खुराक ले सके और उनमें बढ़ोतरी हो सके।
अच्छा, अच्छे अंकुर जो है ना वो बड़ा काम करते हैं जी, तो और बीज आलू में बढ़िया अंकुर बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए, अच्छे अंकुर बनाने के लिए सबसे पहला काम यह है कि जब बोरियों से आलू निकाल के उसको पहले या तो लकड़ी की क्रेट्स हों या प्लास्टिक क्रेट्स में उसको बदल देना चाहिए उनको, और उनको जो धीमी रोशनी हो घर के अंदर उसके अंदर ही उनको रखना चाहिए, सीधे सूरज की रोशनी में उनको कभी नहीं रखना चाहिए, धीमी रोशनी, चाहे वो बल्ब की रोशनी हो चाहे वो खिड़की से रोशनी आती हो उसमें रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि रोशनी मिलती रहेगी और जो है पहले आलू हरे हो जाएंगे, फिर अंकुर भी हरे हो जाएंगे, और उससे मोटे अंकुर होंगे, और ये मोटे अंकुर जो है अच्छी पैदावार देने में मदद करेंगे।
अच्छा, मान लो जी अंकुर हो गया जी, और आलू की हमने बीज आलू की बुआई करनी है, फिर कैसे करेंगे इसकी बुआई?
देखिए, पहाड़ी इलाके जो है आप जानते हैं कि ये ढलानदार खेत होते हैं
जी,
और ढलानदार खेत में क्या होता है कि किसान तो ये सोचता है कि ठीक है ऐसे हिसाब से लगाया जाए कि उसके खेत में से पानी आसानी से निकल जाए, लेकिन वो वैज्ञानिक तरीका आलू की खेती करने का तरीका नहीं है, या बीज पैदा करने का वैज्ञानिक तरीका नहीं है
जी।
हमारी सलाह तो किसान भाइयों के लिए है कि वो खेत को तैयार करने के बाद में उसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाए, और वो क्यारियां जो है वो ढलान के विपरीत बनाए, कि उनमें ढलान के विपरीत ही पंक्तियां बनाए, जिससे कि जो पानी अगर थोड़ी बारिश हुई है तो पानी पंक्तियों के बीच में रुक रुक के रहेगा, जिससे कि पौधों को पानी मिलेगा, नमी बनी रहेगी, पैदावार भी बढ़ेगी, और उसमें जो जमना है आलुओं का वो जल्दी से जम जाएगा। जमने से क्या होगा कि एकदम से यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं, एक से पैदावार
एक बराबर
जैसी फसल की उगाई होगी, और उससे जो है पैदावार में जो हमको मदद मिलेगी वो ढलान के साथ साथ आलू लगाने से हमको वो फायदे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ढलान के साथ लगाने से जो भी हमने फर्टिलाइजर डाला है या गोबर की खाद डाली है उसके सारे के सारे सत्व बारिश के पानी के साथ बहकर नाले में चले जाएंगे।
और किन बातों का ध्यान हमारे को रखना चाहिए?
इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जिनको विशेष ध्यान रखना जरूरी है, जैसे है कि मिट्टी जब आलू लगाते हैं उसको ज्यादा ऊंचा ऊपर नहीं लगना चाहिए, जैसे कि क्या होता है कि पहाड़ों में सूखा पड़ने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए इसको गहराई में लगाना चाहिए। अगर नमी ज्यादा है तो उसको उथली मिट्टी में लगाना चाहिए, अगर सूखा है तो गहराई में लगाना चाहिए, और अगर ठीक है तो फिर बीच की गहराई में लगाना चाहिए
जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो आज के प्रमाणीकरण की जो बात चली है ना जी, ये क्या चीज है?
देखिए, प्रमाणीकरण जो है वो बीज की गुणवत्ता के मूल्यांकन करने की एक विधि है
जी।
इसमें है जो बीज है वो एक ही जाति का होना चाहिए और बीमारी रहित होना चाहिए, कंदों का आकार भी एक जैसा होना चाहिए, तो ये उसका प्रमाणीकरण के कुछ गुण होने चाहिए उसमें जो जरूरी है।
अच्छा, ये किसी बोलते हैं भी किसी दफ्तर में ये कराना पड़ता है, इसका कोई सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, तो इसकी कोई फीस वगैरह भी देनी पड़ती है?
हाँ, इसका प्रमाणीकरण के लिए है कि जो राज्य की बीज प्रमाणीकरण संस्था है उससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन के समय 25 रुपये जो है वो रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन होती है वो प्रार्थना पत्र उसके लिए देना पड़ता है, और उसके बाद में 300 रुपया जो है प्रति हेक्टर के हिसाब से प्रमाणीकरण की फीस देनी पड़ती है। जब आलू खोदने को होता है तो उसके बाद में जब है कि कहते हैं कि टैगिंग बैगिंग जिसको कहते हैं या उसको, उसके समय भी आलू को क्योंकि बोरीबंदी जिसको कहते हैं बोरीबंदी कराने के लिए 6 रुपया प्रति बोरी के हिसाब से फीस देनी पड़ती है, जिससे कि किसान उसको प्रमाणीकरण करके दूसरे किसानों को बेच सके और अपने लिए भी इस्तेमाल कर सके।
अच्छा, मान लो जैसे राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था जो आपने बताई ना, जो वहाँ पे मैंने अपना जो है बीज प्रमाणीकरण करवाना है, तो इसके लिए फिर क्या क्या कैसे कैसे करेगी?
इसमें सबसे पहले तो है कि जो राज्य की प्रमाणीकरण संस्था है उसके पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको अपने बताना पड़ेगा कि मैंने मेरा जो बीज लिया है कहीं से, उसका सोर्स बताना पड़ेगा, उसका साधन बताना पड़ेगा कि कहाँ से लिया, किस किस्म का लिया, कौन सी वैरायटी का लिया है, और ये सब चीज़ें बताने के बाद में आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ मैं बीज पैदा करने में क्षमता रखता हूँ। ये सारी जानकारी देने के बाद आपको उनके साथ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो भी बीमारियाँ या जो से बीमारियाँ लगने वाली हैं उनकी जानकारी आपको बताना पड़ेगा कि मैं उनकी सावधानी पूर्वक उनकी परवाह कर सकूँगा और अच्छी किस्म का बीज पैदा कर सकूँगा, ये आप प्रमाणीकरण संस्था को बताना पड़ेगा।
अच्छा, ये बताना पड़ेगा, और क्या करना जी?
उसके अलावा उसके बाद में फिर वो जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वो अपने एक अपने इंस्पेक्टर को वो भेजेंगे आपके खेत में, वो देखेंगे कि आपने जो बताया है उसके अनुसार आपकी फसल उगाई गई है, वो सही किस्म की है, आपने सही जगह से आपने बीज लिया है, इन सब चीजों को देखते हुए वो पहले इंस्पेक्शन में आपको है कि ये बताएंगे कि हाँ आप जो है एक सही किसान हैं और आप अच्छी किस्म का बीज पैदा कर सकते हैं, और पहले इंस्पेक्शन में वो ये देखने के लिए आएंगे।
अच्छा, दूसरे और तीसरे में?
दूसरे इंस्पेक्शन में ये देखने आएंगे कि उसमें जो आपने प्रॉपरली इसमें जो रोगिंग है जिसको कहते हैं ना कि जो बीमार पौधे हैं या हाँ या है दूसरी किस्म के पौधे हैं वो आपने उनको निकाल दिया है या कोई इस तरह के पौधे आपकी फसल में नहीं है तो वो देखने आएंगे, और उसके अलावा ये भी देखने आएंगे कि आपने जो स्प्रे है बीमारियों को रोकथाम के लिए वो भी आपने कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, तो इस देखने के बाद में वो इंस्पेक्शन करेंगे और 100 पौधों पर अपना निरीक्षण करेंगे। 100 पौधों में एक माहू कीड़ा होता है उसको भी देखेंगे, अगर वो माहू कीड़े की संख्या अगर पाई गई तो वो आपको या तो है कि आप उसकी रोकथाम के लिए आपको सलाह देंगे या फिर वो कहेंगे कि आपकी फसल में आपको स्प्रे करना है, वो तुरंत आप स्प्रे करें जिससे कि वो कीड़े से वायरस की बीमारी ना फैले।
अच्छा, इसका तो यही उद्देश्य हुआ डॉक्टर साहब आपकी बात से लगता है कि जो एक बार जो बीज तैयार हो वो बढ़िया किस्म का तैयार हो और हमारे प्रदेश के या देश के अन्य किसानों के पास जो जाए तो बढ़िया किस्म का बीज जाए। तो डॉक्टर सरजीत सिंह जी, देखो आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो उत्तम किस्म का जो बीज आलू हमने तैयार करना है उसकी बुआई करनी है कैसे करनी है, और प्रमाणीकरण करने के लिए हमारे को जो है राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में जाकर के एक एप्लीकेशन देनी, अर्जी देनी, वहाँ पे वो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं, और उसके बाद फिर उनके जो नुमाइंदे हैं वो आकर के खेतों में हमारे को सलाह भी देते हैं और सलाह के साथ साथ वो चेकिंग भी करते हैं। तो इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला पिछले 54 वर्षों से देश में आलू की फसल के विकास के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। संस्थान ने अब तक आलू की 35 नई किस्में जारी की हैं और प्रजनन, बीज उत्पादन, सभी जलवायु क्षेत्रों के लिए कृषि तकनीक, तकनीकी प्रशिक्षण, किसान गोष्ठियां, प्रदर्शनियां व आकाशवाणी पर पाठशालाएं जैसे अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा है। संस्थान ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति व पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसी कारण भारतवर्ष में आलू का उत्पादन लगभग 14 से 15 गुना बढ़ा है। इस रेडियो पाठशाला में किसान भाई बहनों को आलू उत्पादन, विपणन व भंडारण संबंधी पहलुओं पर संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
वाह जी वाह, देखो यार एक बात है सफरान जी।
हाँ जी,
अपने पटड़े पर बैठने का ना अपना ही मजा है।
बिल्कुल,
अब कभी कभी संधि बिजली कर देते गड़बड़, मेरा पटड़े ले जाते हैं।
बिल्कुल, पर मेरी जगह कहाँ है आज?
हैं?
आज मेरी जगह पर तो कोई और ही बैठ गया।
अब देखो भाई, आज
भी बड़ा भारी
रश तो है ही है, ठीक टाइम के आया करो, पाठशाला है कोई, ऐसे थोड़े ही जब मर्जी घूमने चले गए।
ऐसा ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं जो है ना जगह ही छूट जाती है।
हाँ चलो ऐसा करो, आप मेरे साथ को हो जाओ।
बिल्कुल बिल्कुल, हो गया
जी। तंगी तो होनी है आपको, पर क्या करना, आप ठीक टाइम के नहीं आते ना।
नहीं, मैं बिल्कुल कल से समय पे आऊंगा। बिल्कुल।
अच्छा, आज हमारे बीच में आए हुए हैं डॉक्टर एस लाल जी। हाँ जी
डॉक्टर साहब, नमस्कार।
तो सब आप किस चीज के बारे में जानकारी देंगे?
हम आज आप किसान भाइयों को आलू की खेती में निराई गुड़ाई व खरपतवारों की रोकथाम के बारे में जानकारी देंगे।
तो निराई गुड़ाई और खरपतवार की जो रोकथाम की जो आपने बात की था जी, तो आलू की फसल में इसका क्या महत्व है?
अच्छी पैदावार व अधिक आमदनी के लिए आलू की फसल में सही समय पर निराई गुड़ाई व मिट्टी चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।
अच्छा अच्छा,
ऐसा करने से कंदों का सही विकास होता है। यदि सही समय पर खरपतवारों की रोकथाम नहीं की गई तो ये आलू की फसल को पूरी तरह से दबा लेते हैं, जिससे उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खरपतवारों पर कई प्रकार के कीट और बीमारियां पनपती हैं जो आलू की फसल को भी नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए खरपतवारों को सही समय पर रोकना अत्यंत आवश्यक है।
अच्छा, तो आलू की जैसे फसल की बात चली थी, देखो आलू की पाशाला है तो आलू की बात होगी, तो इसमें कौन कौन से खास तौर पे जो है वो मोटे मोटे खरपतवार होते हैं?
पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की फसल में पाए जाने वाले खरपतवारों में से दूब घास, जंगली चौलाई, बथुआ, सामा घास, सेंजी, खट्टी बूटी, सतगठिया, मोथा मुख्य खरपतवार हैं जो आलू की फसल में पाए जाते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये खरपतवार तो हो गए कि कौन कौन से, पर इनको जो है निकालने के कौन कौन से तरीके?
आलू की फसल में खरपतवार हाथ द्वारा भी उखाड़े जा सकते हैं
जी,
साथ ही खुरपी और खिलने की मदद से भी इन्हें निकाला जा सकता है। बैलों द्वारा चलने वाली त्रिफाली आदि की मदद से भी खरपतवारों को निकाल सकते हैं
जी।
इसके अलावा बाजार में कई तरह की खरपतवार नाशक दवाइयां मिलती हैं, जिनके उपयोग से खरपतवारों को खेत में उगने और बढ़ने से रोका जा सकता है।
अच्छा, बात देखो निराई गुड़ाई की भी चली हुई थी, तो अब निराई गुड़ाई की अगर हम बात करें तो ये आलू की फसल में कब करनी चाहिए?
आपने सही प्रश्न पूछा
जी।
पहाड़ी इलाकों में आलू की फसल अधिकतर वर्षा पर निर्भर है, इस कारण निराई गुड़ाई का फसल के उत्पादन पर विशेष प्रभाव पड़ता है
जी।
पहाड़ों पर खेत में नमी की उपलब्धता के आधार पर आलू को उगने में लगभग 20-30 दिन लग जाते हैं। इसके बाद खेत में निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। यदि इसके पहले बारिश हो जाती है तो खेत में सख्त पपड़ी बन जाने की संभावना भी होती है
जी,
जिससे आलू के जमाव में देरी हो सकती है। इससे बचने के लिए खिलने या क्रश ब्रेकर द्वारा पपड़ी तोड़ देनी चाहिए, इससे आलू का जमाव शीघ्र होगा और पौधे जल्दी बढ़ेंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात आती है ना कि हमारे किसान भाइयों ने जब निराई गुड़ाई करनी ना तो किन किन बातों को ध्यान में रखना?
निराई गुड़ाई करते समय हमेशा ये ध्यान रहे कि आलू के अंकुरों को नुकसान न पहुंचे। निराई गुड़ाई करते समय इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों से अंकुर टूट जाते हैं
जी,
इसलिए आलू की लाइनों में धीरे धीरे औजार चलाएं जिससे इनको नुकसान ना पहुंचे
जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है, अब देखो जो खरपतवार की बात चली गई थी ना, मेरे मन में एक बात आई अभी कि जो है अभी हम हाथ से निकाल सकते हैं।
हाँ जी,
तो आजकल के टाइम में देखो, एक तो घर में काम करने वाले आदमी कम है और खेत अगर ज्यादा हो आदमी के तो फिर कितने कर खरपतवार निकालेगा। तो आपने दवाइयों की बात की थी, तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो जिनसे हम खरपतवार को खत्म कर सकते हैं?
आजकल बाजार में बहुत तरह की खरपतवार नाशक दवाइयां मिलती हैं
जी।
आलू की फसल में खरपतवार नाशक दवाइयों को किस समय उपयोग किया जाए, इन्हें 3 श्रेणी में बांट सकते हैं
जी।
एक तो आलू बिजाई के पहले उपयोग होने वाले खरपतवार
जी,
जिसमें आलू बिजाई के पहले खेत में हम इनको छिड़क देते हैं, छिड़कने के बाद उनको मिट्टी में अच्छी तरह मिला देते हैं। इसमें 2 मुख्य खरपतवार नाशक हैं, एक का नाम है फ्लूक्लोरेलिन जो बाजार में बैसलिन नामक दवाई से मिलता है
जी।
इसकी 60 ग्राम प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें और फिर इसको खेत में अच्छी तरह से मिला दें। दूसरी जो खरपतवार नाशक दवाई है जो बिजाई के पहले प्रयोग की जाती है, उसका नाम है पेंडीमेथिलिन। ये बाजार में स्टॉम्प नामक दवाई से किसान भाई खरीद सकते हैं
जी।
पेंडीमेथिलिन की 40 ग्राम प्रति बीघा की दर से खेत में 50 से 60 लीटर पानी में सोल्यूशन बना के उसका छिड़काव कर दें और फिर इसको अच्छी तरह से मिला दें। अगर किसान भाई इसको नहीं मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये वाष्पीकरण इसका दवाई का बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए इसको खेत में मिलाना बहुत जरूरी होता है।
तो आपने 2 दवाइयां बताई,
एक तो फ्लूक्लोरिन जो बाजार में बैसलिन नाम से मिलती है,
बैसलिन जी,
दूसरी पेंडीमेथिलिन जो बाजार में स्टॉम्प नाम से मिलती है
जी। स्टॉम्प और बैसलिन जी, ये बिजाई से पहले इस्तेमाल,
पहले बिजाई से पहले खेत में छिड़काव कर देना चाहिए
जी।
फिर हल से जुताई करके उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे दवाई उड़ने न पाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी दवाई उड़ जाती है
जी।
तो बिजाई के बाद कौन सी प्रयोग में ला सकते हैं?
बिजाई के बाद आलू तथा खरपतवार उगने से पहले उपयोग होने वाले खरपतवार कई सारे बाजार में उपलब्ध हैं। इन खरपतवार नाशकों का छिड़काव खेत में आलू तथा खरपतवार उगने से पहले खेत में बिजाई के 4-5 दिन के अंदर कर देना चाहिए
जी।
खरपतवार उगाने के बाद ये ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। इस श्रेणी के मुख्य खरपतवार नाशक दवाइयां जो आलू की फसल में उपयोग की जाती हैं, उनके नाम मैं बता रहा हूं। ये है, एक एलाक्लोर है जो बाजार में लासो नामक दवाई से मिलता है
जी।
एलाक्लोर की मात्रा 100 ग्राम प्रति बीघा की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा आइसोप्रोटोनान नामक दवाई है जिसका उपयोग 70 ग्राम प्रति बीघा की दर से करना चाहिए। इसके अलावा एक लिनुरान जो बाजार में एफोलान नामक दवाई से मिलती है, इसका 50 ग्राम प्रति बीघा की दर से छिड़काव करना चाहिए
जी।
इसके अलावा मेट्रीब्यूजिन भी बाजार में मिलती है, जिसको किसान भाई सेंकर का नाम से खरीद सकते हैं। इसकी मात्रा भी 70 ग्राम प्रति बीघा की दर से करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी खरपतवार नाशक दवाई जिसका नाम ऑक्सीफ्लोरोफेन है, जो बाजार में गोल नाम खरपतवार नाशक दवाई से मिलती है। इसकी मात्रा बहुत कम किसान भाइयों को यूज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही नुकसानदायक, अगर इसकी मात्रा जरा भी बढ़ा देंगे तो बहुत फसल को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसकी मात्रा 10 ग्राम प्रति बीघा की दर से करना चाहिए। उसके अलावा 2,4-D भी मिलती है, जिसकी मात्रा 40 ग्राम प्रति बीघा की दर से करनी चाहिए।
जी,
उपरोक्त खरपतवार नाशक दवाइयों में से आइसोप्रोटोरान और 2,4-D केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम करते हैं, तथा अन्य सभी रसायन चौड़ी पत्ती तथा घास दोनों प्रकार के खरपतवारों को मार देते हैं।
जिससे खरपतवार जब लग जाते हैं ना जी,
हाँ जी,
तो मान लो खरपतवार लग गए, हाँ देखो बड़ा नुकसान करते हैं जी,
वो तो करते ही जी।
तो उसके बाद भी ऐसी कोई दवाइयां हैं भी हम इनसे निपट सकते हैं?
हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया। कई बार किसान भाई ये दोनों तरह की दवाई नहीं यूज कर पाते हैं
जी।
उस समय जब खरपतवार खेत में निकल आए, प्रयोग करने के लिए हमारे पास दो खरपतवार नाशक दवाइयां हैं। एक है पैराक्वाट, जो बाजार में ग्रैमेक्सोन नामक दवाई से मिलती है। पैराक्वाट की 40 ग्राम प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा एक दूसरी खरपतवार नाशक दवाई है, जिसको हम प्रोपोनिल के नाम से जानते हैं। ये बाजार में किसान भाई स्टेम F34 के नाम से खरीद सकते हैं। इसकी दर 80 ग्राम प्रति बीघा की दर से 50 से 60 लीटर पानी में सोल्यूशन बना के छिड़काव करें। जो पैराक्वाट है, जिसको हम ग्रैमेक्सोन कहते हैं, इसका छिड़काव खरपतवारों पर आलू के पौधे बचाकर करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी खरपतवार होंगे या पौधे होंगे, अगर छिड़काव करेंगे तो आलू के पौधों को भी मार देगा। इसलिए हमको आलू के पौधे बचा के उसका छिड़काव करना चाहिए। प्रोपेनिल जो STM F34 है, वो घास वाले खरपतवारों पर काफी प्रभावी होता है, जबकि पैराकॉट किसी भी तरह के खरपतवार होंगे, चाहे चौड़ी पत्ते वाले हों चाहे घास वाले होंगे, सबको पूरी तरह से मार देते हैं।
तो डॉक्टर साहब, ऐसा है, जानकारी तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं आप।
हाँ,
आपने बताया भी जो आलू की फसल पैदावार से पहले वैशाली ने बताई, आपने लासो बताई, फिर आलू की अगर हम फसल लगा दें उसके बाद भी आपने खरपतवार बताए।
हाँ जी,
और जब खरपतवार उग जाएं उसके बाद भी, तो ऐसा है कि डॉक्टर साहब बातचीत तो चलती रहेगी हमारी, क्यों ना बीच में थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए भी, ऐसा भी गीत संगीत से मेरा भी मन थोड़ा सा तरोताजा हो जाता
है। हाँ जी, जरूर किया जाए।
किसी को पीस मिले, कभी मुस्काए कभी खेड़े कभी बात करे, कथा कैसे न चले कथा कैसे न चले आजकल मन
मधुबन में भले कान्हा किसी को पीस मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले इसलिए राधा जले न सोचे समझे इसलिए राधा जले इसलिए राधा जले। तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा, ओ गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। गोपियाँ आनी जानी है राधा तो मन की रानी है, गोपियाँ आनी जानी है राधा तो मन की रानी है, सांझ सखारे चमना किनारे राधा राधा ही कान्हा पुकारे।
वाह जी वाह डॉक्टर जी।
हाँ जी,
देखा आज मैं अपनी पसंद का गाना लेके आया।
वाह जी वाह, मैंने आपने बड़ा अच्छा गाना सुना
डॉक्टर साहब, पसंद आया आपको?
बहुत अच्छा लगा हमें।
तो ये जो खरपतवार की जो बात चली हुई थी ना, वो दवाइयों की आपने बात की, देखो आलू के ऊपर नहीं डालनी,
हाँ जी,
नहीं तो खरपतवार का तो नुकसान होगा ही होगा, फसल का नुकसान भी हो जाएगा।
हाँ जी, हाँ जी।
और किन किन बातों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए?
आपने सही प्रश्न पूछा। जो खरपतवार नाशक तो वैसे तो बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन अगर उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल ना करें तो हमें फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है
जी।
इसलिए हमें खरपतवार खत्म करने के लिए और इसका हमारी आलू की फसल पे बुरा प्रभाव ना पड़े, हमें कुछ सावधानियां बरतने जरूरी होती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ खरपतवार नाशक ऐसे हैं जो बिजाई के पहले डालने चाहिए, कुछ बिजाई के बाद डालने चाहिए, तथा कुछ खरपतवार नाशक ऐसे हैं जिनको खरपतवार निकलने के बाद डालने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा, इनका कोई असर नहीं होगा
जी।
इसके अलावा एक पैराक्वाट नामक, जिसको ग्रेमेक्सोन के नाम से बाजार में मिलते हैं, अगर इसका ठीक ढंग से उपयोग न किया गया तो सारी फसल चौपट हो सकती है। इसके लिए इसको आलू के पौधों को बचा के ही छिड़काव करना चाहिए। घोल बनाते समय दवाई सही ढंग से पानी में घोलें तथा सारे खेत में छिड़काव एक समान करें। एक और सावधानी बरतनी चाहिए, जब बहुत तेज हवा चल रही हो उस समय छिड़काव नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, खरपतवार नाशक जो दवाइयां हैं उससे क्या हम बीज, आलू की पत्तियां और जो डंठल हैं उसको भी खत्म कर सकते हैं?
हाँ जी, पैराक्वाट खरपतवार नामक रसायन से बीज वाले आलू के खेत में आलू के पौधों के डंठल और पत्तियों को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए इस दवाई को 45 ग्राम प्रति बीघा की दर से 75 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आलू के डंठल खत्म हो जाएंगे। को माहों द्वारा फैलने वाले विषाणु रोग को बीमार पौधों से स्वस्थ पौधों में फैलने में रोका जा सकता है।
तो डॉक्टर साहब, आज आप आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों से निवेदन है कि ठीक ढंग से अपने खेत में आलू के खरपतवारों को रोकने का प्रयास करें।